भारतीय भाषा परिवारों की भिन्नता। अब हम इस समस्या पर विचार करेंगे कि भारत में चार भिन्न भाषा परिवार विद्यमान हैं। ये सब शब्द भंडार और व्याकरण की दृष्टि से एक दूसरे से अलग हैं। इन परिवारों की भाषाएं बोलने वाले एक ही राष्ट्र में कैसे शामिल किए जा सकते हैं? पहले तो यह देखना चाहिए कि राष्ट्र के निर्माण और विकास से भाषा परिवारों की भिन्नता का कुछ भी संबंध नहीं है। यह निर्माण और विकास इस बात पर निर्भर है कि भिन्न भाषाएं बोलने वाली जातियों के आपसी संबंध कैसे हैं, उनकी ऐतिहासिक परंपराओं में कितनी समानता है, उनके आपसी आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं इत्यादि। सोवियत संघ में इंडो यूरोपियन, फिनो-उग्रियन और तुर्क परिवारों के अलावा जॉर्जिया और कॉकेशस प्रदेशों में एस्किमो, चुकची आदि जातियों के उत्तरी क्षेत्रों में अनेक परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। वास्तव में भारत की अपेक्षा वहां भाषा परिवारों की विविधता कहीं अधिक है। यह भी याद दिलाना उचित होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड इंडियन आदिवासियों की भाषाएं एक ही परिवार की नहीं है और अंग्रेजी भाषा उन सबसे भिन्न परिवार की है। स्पेन और फ्रांस में जो बास्क भाषा बोली जाती है वह फ्रांसीसी और स्पेनी भाषाओं से भिन्न परिवार की है और ताइवान द्वीप की भाषा भारत की मुंडा भाषाओं से अधिक मिलती जुलती है। चीनी भाषा से उसका कोई संबंध नहीं है। अनेक आधुनिक राष्ट्र और राज्य न केवल बहुजातीय हैं, वरन उनमें निवास करने वाली जातियाँ एक से अधिक परिवारों की भाषाएं बोलती हैं। इसलिए भारत में अनेक भाषाओं का बोला जाना अथवा उनका अनेक परिवारों से संबद्ध होना कोई अनोखा व्यापार नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय भाषा परिवार संसार के किसी भी देश, राज्य या राष्ट्र की भाषाओं की अपेक्षा अधिक दीर्घकाल से साथ साथ रहते आए हैं। अनेक भाषा विज्ञानी भारत को भाषागत इकाई मानते हैं। भाषागत इकाई का अर्थ यह है कि एक ही भूखंड में बहुत दिनों तक साथ में रहने के कारण भिन्न भाषा परिवारों ने ऐसी सामान्य विशेषताएं विकसित की हैं जो भारत के बाहर इन परिवारों से संबद्ध अन्य भाषाओं में नहीं मिलती। यथा भारत का आर्य भाषा परिवार इंडो यूरोपियन परिवार की शाखा माना जाता है, उसमें और द्रविड़ भाषा परिवार में ऐसी सामान्य विशेषताएं उत्पन्न हुई हैं जो यूरोप की आर्य भाषाओं में नहीं मिलती। यही नहीं, यह भाषागत पृष्ठ संख्या 62 इकाई की स्पष्ट पहचानी जाती है कि भारत के बाहर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में जहां वे सामान्य विशेषताएं लक्षित होती हैं, वहां उन प्रदेशों को भी कुछ भाषा विज्ञानी बृहत्तर भारत के अंतर्गत शामिल करते हैं। इससे कम से कम इतना तो सिद्ध होता है कि भारतीय भाषा परिवारों में परस्पर आदान प्रदान शताब्दियों तक होता रहा है और इन शताब्दियों में परस्पर संयुक्त परिवारों में से कोई भाषा परिवार नष्ट नहीं हो गया। भाषागत इकाई वाले सिद्धांतकार यह मानकर चलते हैं कि इन भाषा परिवारों का निर्माण पहले भारत से बाहर हो गया था, एक दूसरे के संपर्क में आए बिना उनकी अपनी अपनी विशेषताएं विकसित हो चुकी थी। भारत में प्रवेश के बाद परस्पर संपर्क के कारण उनमें कुछ नई सामान्य विशेषताएं उत्पन्न हुई। इस धारणा का आधार यह कल्पना है कि कोई भी भाषा परिवार किसी आदि भाषा में शाखाएं फूटने से बनता है और यह आदि भाषा किसी ऐसे प्रदेश में निर्मित होती है जहां किसी भी अन्य आदि भाषा या उसकी शाखाओं से उसका संपर्क नहीं होता। किंतु भाषा परिवारों के तुलनात्मक अध्ययन से इस कल्पना की पुष्टि नहीं होती। तीसरी बात यह है कि भारतीय भाषा परिवारों में कुछ सामान्य विशेषताएं ऐसी हैं जैसी यूरोप के एक ही भाषा परिवार में नहीं है। भाषा परिवार तो बड़ी चीज है, किसी एक परिवार की एक ही शाखा की भाषाओं में भी वैसी समानता नहीं है जैसी यहाँ विभिन्न भाषा परिवारों में है, स्वभावतः एक ही भारतीय भाषा परिवार अथवा उसकी एक शाखा की भाषाएं परस्पर और भी अधिक संबद्ध हैं। भारत की राष्ट्रीयता का विवेचन करते हुए इन बातों का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि यहाँ की जातियों के परस्पर संपर्क की बहुत सी बातें इस इतिहास और पुरातत्व से नहीं जानी जा सकती, वे केवल भाषा परिवारों के तुलनात्मक अध्ययन से जानी जा सकती है। वर्तमान भारत में चार भाषा परिवार है, आर्य, द्रविड़, नाग और कोल। इनमें आर्य और द्रविड़ परस्पर सुदृढ़तम रूप से संबद्ध हैं और इनकी यह संबद्धता भारत के समस्त भाषाई मानचित्र को प्रभावित करती है। सबसे पहले वाक्य तंत्र की एक विशेषता उल्लेखनीय है। भारत के सभी भाषा परिवारों में वाक्य रचना इस प्रकार होती है कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है और कर्म क्रिया से पहले आता है। उदाहरण के लिए तमिल का एक वाक्य लें, इव नई औरु पैरिय नाग सर्पम कड़िक इरुंददु। अ से आशय है ह्रस्व ओकार और से आशय है ह्रस्व एकार। इसका अर्थ हुआ, इसको एक बड़ा सांप काटने को था। हिंदी का वाक्य विन्यास की दृष्टि से तमिल वाक्य से मिलता जुलता है, कर्म क्रिया से पहले आया है। यह वाक्य आंद्रोनोव के तमिल व्याकरण में दिया हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में नाग परिवार की पृष्ठ संख्या 63। इदु भाषा बोली जाती है, इसका एक वाक्य देखें, एच इमु में बीड़ी अजीजी। इसका अर्थ है, यह आदमी बीड़ी जलाता है। यह वाक्य सिलंग से प्रकाशित ए फ्रेज बुक इन इदु में दिया हुआ है। यहाँ कर्म बीड़ी क्रिया से पहले आया है, क्रिया वाक्य के अंत में है। मुंडा परिवार की वोंडा भाषा में डॉकरी सेली बाट अला इस्त्री ने सालन बाट दिया, कर्म पहले क्रिया बाद में। यह वाक्य सुधी भूषण भट्टाचार्य की पुस्तक ए वोंडा डिक्शनरी से लिया गया है। आर्य और द्रविड़ परिवारों में वाक्य रचना का यह ढंग किसमें पहले विकसित हुआ, यह कहना कठिन है। प्राचीनतम उदाहरणों में यही रूप मिलता है। नाग भाषा परिवार में संभव है वाक्य रचना दूसरे ढंग की रही हो। नाग भाषा परिवार को चीनी तिब्बती परिवार कहा जाता है। चीनी तिब्बती परिवार की दो शाखाएं बताई जाती हैं, एक तिब्बती बर्मी, दूसरी चीनी। इन दोनों में यथेष्ट भेद है। पॉल के बेनेडिक्ट ने चीनी तिब्बती परिवार पर एक पुस्तक लिखी है, साइनो टिबेटन ए कॉन्स्पेक्टस प्रिंस्टन 1972। इसमें उन्होंने बताया है कि चीनी और तिब्बती बर्मी भाषा समुदायों का संबंध दूर का है। हमारे लिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीनी समुदाय की भाषाओं में कर्म क्रिया के बाद आता है, पर तिब्बती बर्मी भाषाओं में निरपवाद रूप से कर्म क्रिया से पहले आता है। यदि यह माना जाए कि तिब्बती बर्मी भाषाएं मूलतः चीनी तिब्बती परिवार की शाखा के अंतर्गत है, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि आर्य द्रविड़ धुरी के प्रभाव से उनकी वाक्य रचना बदल गई है। यदि ऐसा है तो 73 भारत में तिब्बती बर्मी भाषाएं भारतीय भाषाओं से अधिक मिलती है, चीनी भाषा से कम। जहां तक मुंडा भाषाओं का संबंध है, उनके विशेषज्ञ पीनो का कहना है कि इस परिवार में पहले यह स्थिति थी कि कर्म क्रिया के बाद आता था। उन्होंने अपने निबंध पर्सनल प्रोनाउंस इन ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंगुआ संख्या 14 1965 में लिखा है, कर्ता कर्म विधेय। यह क्रम अब मुंडा भाषा समुदाय में सामान्य हो गया है। निस्संदेह यह क्रम द्रविड़ और भारतीय आर्य पद्धतियों के प्रभाव से प्रविष्ट हुआ था। यदि इस बात को सही माना जाए तो साथ में यह भी मानना होगा कि प्रभाव केवल आर्य परिवार का नहीं है, द्रविड़ परिवार का भी है। आर्य द्रविड़ धुरी कोल अथवा मुंडा परिवार को प्रभावित करती है। भाषाविद नॉर्मन एच जाइड ने कोल भाषा परिवार पर एक पुस्तक संपादित की है, स्टडीज इन कंपैरेटिव ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक्स। इसमें उक्त स्थापना की आवृत्ति की गई है। मुंडा समुदाय में सर्वनाम से भिन्न जो कर्म हो उसे क्रिया से पहले रखना और खड़िया भाषा में सर्वनाम वाले कर्म को भी क्रिया से पहले रखना भारतीय आर्य तथा अथवा द्रविड़ प्रभाव के कारण पृष्ठ संख्या 64 है। आर्य और द्रविड़ दोनों परिवारों में एक सामान्य विशेषता है, कोल भाषाओं पर इन दोनों का अथवा किसी एक का प्रभाव हो सकता है। इस समानता से यूरोप की भाषाओं में जो असमानता है उनकी तुलना करना चाहिए। जर्मन और अंग्रेजी दोनों भाषाएं एक ही शाखा की हैं। अंग्रेजी में कर्म क्रिया के बाद आता है, जर्मन में किन्हीं स्थितियों में वह क्रिया से पहले भी आता है। डास मेडखेन जागते जी हेटे डास बुख ले गेले जेन। इस जर्मन वाक्य का अर्थ हुआ लकड़ी ने कहा कि उसने किताब पढ़ ली है। अंग्रेजी में यह वाक्य इस प्रकार होगा, द गर्ल सेड शी हैड रेड द बुक। अंग्रेजी में जो बुक है वह जर्मन में बुक है। अंग्रेजी वाक्य में बुक क्रिया के बाद है, जर्मन वाक्य में बुक क्रिया से पहले है। इस तरह की मिसालें यूरोप की अन्य भाषाओं से भी दी जा सकती है। सिद्ध हुआ कि विन्यास तंत्र की दृष्टि से यूरोप की एक ही भाषा की शाखाओं में उतनी समानता नहीं है जितनी भारत के चार परिवारों की भाषाओं में है। एक विशेषता रूप तंत्र की देखे, चाहे तो इसे विन्यास तंत्र में शामिल कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में कारक चिन्ह अथवा संबंध सूचक शब्द या शब्दांश संज्ञा के बाद आते हैं, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन होते हैं। भारतीय भाषाओं में पोस्ट पोजिशन होते हैं। जाइड द्वारा संपादित उपर्युक्त पुस्तक में बताया गया है कि पहले कोल भाषा परिवार में कारक चिन्हों के बाद संज्ञा का स्थान होता था, किंतु अब उस परिवार की अधिकांश भाषाओं में पोस्ट पोजिशनों का चलन है। बेनेडिक्ट अपनी ऊपर लिखित पुस्तक में यही बात तिब्बती बर्मी भाषाओं के लिए कहते हैं, आर्य और द्रविड़ भाषाओं में पोस्ट पोजिशन का चलन है ही। इस प्रकार सभी भारतीय भाषा परिवार इस नियम का पालन करते हैं कि कारक चिन्ह अथवा संबंध सूचक शब्द या शब्दांश संज्ञा के बाद आएगा। भारत में जो भाषाएं संश्लेषणात्मक हैं या थी और जो भाषाएं विश्लेषणात्मक अथवा अर्ध विश्लेषणात्मक हैं, उन सभी में एक सामान्य प्रवृत्ति है, वह यह है कि विभक्ति चिन्ह स्वतंत्र कारक चिन्ह अथवा संबंध सूचक चिन्ह सर्वत्र संज्ञा के बाद आता है। यह स्थिति चार भिन्न परिवारों की भाषाओं में है, किंतु यूरोप में एक ही इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं दो तरह के नियमों का पालन करती हैं। जो भाषाएं संश्लेषणात्मक हैं या थी, जिनमें संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह संयुक्त होता है, उनमें संस्कृत की तरह विभक्ति चिन्ह संज्ञा के बाद आता है, किंतु यही भाषाएं प्राचीन ग्रीक और लैटिन भी प्रीपोजिशनों का व्यवहार करती है। प्रीपोजिशनों वाली नई पद्धति इतनी प्रबल है कि वह पुरानी पोस्ट पोजिशनों वाली पद्धति को लगभग व्यर्थ कर देती है, लगभग पूरी तरह नहीं, क्योंकि विभक्ति चिन्ह कायम रहते हैं और कभी कभी अपना काम भी करते हैं। जो भाषाएं विश्लेषणात्मक हैं अथवा अर्ध विश्लेषणात्मक हैं, उनमें पृष्ठ संख्या 65 प्रीपोजिशनों वाली पद्धति का ही चलन है। इस दिशा में भारतीय भाषा परिवारों ने आश्चर्यजनक सामंजस्य कायम किया है। उधर यूरोप के एक ही भाषा परिवार में काफी वैषम्य दिखाई देता है। भारतीय भाषाओं में एक सामान्य प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, वह है दो क्रियाओं को मिलाकर उनका प्रयोग करना, जिससे मूल क्रिया के अर्थ में भेद उत्पन्न होता है। हिंदी में उठ बैठा, चला गया, फिर पढ़ा जैसे प्रयोगों से हम परिचित हैं। इस तरह के प्रयोग अन्य आर्य भाषाओं में जो होते ही हैं, द्रविड़ भाषाओं में भी ऐसे प्रयोगों की भरमार है, यथा तमिल में ओडिपोयविटाय में तीन क्रियाएं शामिल हैं। हिंदी में इसका अर्थ भाग चले किया जा सकता है, जैसे हिंदी में वह गया और वह चला गया में थोड़ा सा भेद है। दूसरे प्रयोग में क्रिया की सघनता अथवा पूर्णता व्यक्त होती है, वैसे ही तमिल में पोनान और पोयवित्तान में अंतर है। पोनान का अर्थ है वह गया और पोयवित्तान का अर्थ होगा वह चला गया। इस तरह के प्रयोग नाग भाषाओं की विशेषता है। ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के तीसरे खंड के दूसरे भाग में असम प्रदेश के नागजनों की भाषाओं से इस तरह के संयुक्त क्रियापदों के अनेक उदाहरण दिए हैं, यथा फई माने आना, लंग माने लेना, इनसे क्रियापद बना लंग फई, जिसका अर्थ होगा ले आ, मन माने पाया, पाना, हुई माने जाना, मन हुई का अर्थ होगा पा जा। इस तरह की संयुक्त क्रियाओं का चलन कोल भाषाओं में है, यथा खड़िया भाषा में बोतोंग माने डरना, गोट माने जाना, बोतोंग गोट का अर्थ होगा डर जाना, गोज माने मरना, गोज गोट का अर्थ होगा मर जाना। ये उदाहरण बिलिगिरी की पुस्तक खरिया में दिए हुए हैं। भाषा में क्रिया पदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो भाषाएं वाक्य के अंत में क्रिया रखती हैं, उनका सारा चिंतन मानव कर्ता से आरंभ करके क्रिया की ओर बढ़ता जाता है। क्रिया वह आखिरी मंजिल है जो वाक्य के आरंभ से ही दिखाई देने लगती है, और उस आखिरी मंजिल के मिल जाने पर वाक्य समाप्त हो जाता है। वाक्य के ऐसे महत्वपूर्ण अंश में चार भिन्न परिवारों के बीच संयुक्त क्रियापदों की रचना संसार की भाषाओं में अनूठी है। यह बहुत लंबे संपर्क और पारस्परिक आदान प्रदान से ही संभव हुई होगी। जहाँ व्याकरणगत ऐसी मूलभूत समानताएं हैं, वहाँ शब्द भंडार में समानता होना स्वाभाविक ही है। क्रियापदों की तरह सर्वनाम भाषा की अचल संपत्ति है। उदाहरण के लिए उर्दू और हिंदी के शब्द भंडार में बहुत अंतर है, किंतु दोनों के क्रियापद एक जैसे हैं। इन सैकड़ों क्रियापदों में 4-6 क्रियापद फारसी मूल के हैं, जैसे बक्सना, पर हिंदी और उर्दू के सर्वनाम बिल्कुल एक से हैं। इनमें फारसी मूल का सर्वनाम एक भी नहीं है। अंग्रेजी में लैटिन और फ्रांसीसी भाषाओं में आयात किए हुए सैकड़ों शब्द पृष्ठ संख्या 66 हैं, किंतु अंग्रेजी का एक भी सर्वनाम लैटिन या फ्रांसीसी मूल का नहीं है। अब भारतीय भाषा परिवारों के सर्वनामों पर दृष्टिपात करें। उत्तम पुरुष एक वचन मैं के लिए तमिल शब्द है नान। नाग समुदाय में तेम भाषा में इतना पर्याय है गी। कोल भाषा परिवार की सोर भाषा में इसी सर्वनाम के लिए यन है। इसका संकुचित रूप इंग भी प्रयुक्त होता है। यहाँ के भाषा परिवारों की अनुनासिक ध्वनियों में जिस तरह की प्रतिरूपता है, उस पर ध्यान देने से यह बात सहज ही समझ में आ जाती है कि न, ग, न्य वाले रूप एक ही मूल के हैं। संस्कृत में हमारे के लिए अस्माकम रूप है, इसका विकल्प है न। इस नह का संबंध अस्मत से नहीं है, द्रविड़ नाग कोल भाषाओं के उक्त सर्वनाम से है। लैटिन, फ्रांसीसी, रूसी आदि भाषाओं में इस नगार वाले उत्तम पुरुष सर्वनाम की भरमार है। संस्कृत की तरह वहाँ भी इसका चलन बहुवचन में है। एक वचन और बहुवचन दोनों में इसका प्रयोग अथवा उसके प्रतिरूपों का प्रयोग द्रविड़ नाग कोल परिवारों की विशेषता है। आर्य परिवार को छोड़कर अन्य भारतीय भाषा परिवारों के घनिष्ठ संपर्क की बात अनेक भाषा विज्ञानी स्वीकार करते हैं। नॉर्वे के भाषाविद कोनाऊ का विचार था कि तिब्बत बर्मी भाषा समुदाय में एक प्रचंड स्तर मुंडा भाषाओं का है और इसके लिए वे सर्वनामों की समानता को प्रमाण मानते थे। बेनेडिक्ट ने इस मत का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है, यद्यपि वह स्वयं इसे स्वीकार नहीं करते। ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण वाले ग्रंथ के चौथे खंड में यह मत व्यक्त किया है कि मुंडा भाषा तत्व तिब्बत बर्मी भाषाओं में पाए जाते हैं। के डी ब्रिज ने कुई पर को समर्पित ग्रंथ प्रतिदानम में एक लेख लिखा था, नव्य भारतीय आर्य भाषाओं में मुंडा सर्वनाम। इस लेख में उन्होंने मुख्यतः मैथिल और अंततः भोजपुरी और मगही में मुंडा सर्वनामों के व्यवहार पर विचार किया है। यहाँ कोनाऊ के इस मत पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि मुंडा समुदाय को जिस ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की शाखा माना जाता है उसमें मुंडा सर्वनामों के प्रतिरूप आसानी से नहीं मिलते। इसका अर्थ है द्रविड़ और नाग भाषाओं में तो ऐसे प्रतिरूप आसानी से मिल जाते हैं, पर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं में भारत से बाहर मुंडा सर्वनामों के प्रतिरूप नहीं मिलते। इन सारे उल्लेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि अनेक भाषा विज्ञानी कम से कम तीन भाषा परिवारों नाग, द्रविड़, कोल के सर्वनामों की समानता स्वीकार करते हैं, कुछ पूर्णतः और कुछ अंशतः, दो चार शर्तों के साथ। द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ कार्डवेल संभवतः एकमात्र विद्वान है जो द्रविड़ सर्वनामों से इंडो यूरोपियन भाषा के सर्वनामों की समानता देखते हैं। वह द्रविड़ भाषाओं को शक परिवार की शाखा के अंतर्गत मानते थे, किंतु उन्होंने तिब्बत बर्मी सर्वनामों से कोल भाषाओं के सर्वनामों की समानता का उल्लेख किया है। पृष्ठ संख्या 67। इन दोनों से द्रविड़ सर्वनामों की समानता देखी है और इंडो यूरोपियन सर्वनामों के बारे में लिखा है कि शक परिवार के सर्वनामों से उनकी इतनी अधिक समानता है कि यह संभव है कि दोनों का मूल उद्गम एक हो। इस मत से इस धारणा की पुष्टि होती है कि भारत के चारों भाषा परिवारों के सर्वनामों में बहुत बड़ी समानता है। अब कुछ बातें ध्वनि तंत्र के बारे में करना उचित है। भारत के विभिन्न भाषा परिवारों के ध्वनि तंत्रों में यथेष्ट भिन्नता है, फिर भी किसी एक भाषा परिवारों में ध्वनि तंत्र की जैसी समानता है वैसी यूरोप की भाषाओं में नहीं है। रूसी और उज्जैनी भाषाएं स्लाव शाखा के अंतर्गत हैं। दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं और शताब्दियों से एक साथ रहते आए हैं। रूसी में एक सामान्य नाम फिलिप है, यह नाम यूरोप की दूसरी भाषाओं में भी प्रचलित है। इनके आरंभ में संघर्षी ध्वनि फ है, अब उज्जैनी लोगों के लिए यह ध्वनि अजनबी है, जिसे इस ध्वनि का उच्चारण करना विशेष रूप से सिखाया गया हो उसकी बात अलग है। साधारण उज्जैनी लोग फ का उच्चारण नहीं कर पाते, उससे मिलती जुलती संघर्षी ध्वनि उनके यहाँ ख है, इसलिए वे फिलिप का उदाहरण फिलिप करते हैं। ख में वह इसलिए जोड़ देते हैं कि उसके द्वारा फ के उच्च रूपर का अनुकरण करते हैं। अब भारतीय भाषाओं में यह कल्पना तीत है कि किसी एक परिवार की भाषा में ख तो हो किंतु फ न हो, जहाँ है वहाँ दोनों है। इसी तरह अंग्रेजी में ज की ध्वनि है किंतु जर्मन में इसका अभाव है, दोनों एक ही शाखा की भाषाएं हैं। इटालियन में च ध्वनि है किंतु फ्रांसीसी में नहीं है, दोनों ही लैटिन शाखा की भाषाएं हैं। इस तरह के भेद किसी एक परिवार या शाखा की भारतीय भाषाओं में प्रायः नहीं है। भारतीय भाषा परिवारों के ध्वनि तंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भेद सघोष महाप्राण स्पर्श ध्वनियों को लेकर है। ये ध्वनियाँ केवल आर्य भाषा परिवार में हैं। द्रविड़ नाग कोल इनमें किसी परिवार में ये ध्वनियाँ नहीं है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञानी कहते हैं कि जिस आदि इंडो यूरोपियन भाषा से लैटिन ग्रीक संस्कृत आदि भाषाओं का विकास हुआ उसमें ये ध्वनियाँ विद्यमान थी। ऐसा मानने का कारण यह है कि संस्कृत के जिन शब्दों में ये ध्वनियाँ हैं उनके प्रतिरूप यूरोप की भाषाओं में हैं। ये प्रतिरूप किस तरह के ध्वनि परिवर्तन से बनते हैं उसके नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे संस्कृत भ्राता या भ्रातर, उसका ग्रीक प्रतिरूप श्रातेर, यहाँ मूल भ ध्वनि का स्थान अघोष महाप्राण ध्वनि फ ने लिया है। भाषा विज्ञानियों का विचार है कि सघोष महाप्राण स्पर्श ध्वनियाँ केवल भारत में बच रही, भारत के बाहर वे नष्ट हो गईं। यह बात काफी रहस्यमय मालूम होती है। उसकी रहस्यमयता का संबंध भारत पर आर्यों के आक्रमण और उनकी विजय की कल्पना से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 68। और इस कल्पना का गहरा संबंध भारतीय भाषा परिवारों के परस्पर संपर्क से है, उस संपर्क के रूप से है, अंततोगत्वा भारत की राष्ट्रीयता से है, इसलिए उस पर विचार करना अनावश्यक है। आर्य परिवार से भिन्न जो तीन भाषा परिवार यहाँ है उनकी यह सामान्य विशेषता है कि उन सभी में सघोष महाप्राण स्पर्श ध्वनियों का अभाव है। आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण करके यहाँ प्रवेश किया होगा तब इन तीन परिवारों की भाषाएं बोलने वालों से उनका संपर्क हुआ होगा। सामान्य धारणा यह है कि उत्तर भारत में द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, आर्यों ने उन्हें पराजित किया, उनकी भूमि पर अधिकार किया और उन्हें अपना दास बनाया। इस कारण मूल भारत ईरानी शाखा में अनेक परिवर्तन हुए। द्रविड़ भाषाओं के व्याकरण ने इस मूल भाषा के व्याकरण को प्रभावित किया। द्रविड़ भाषाओं के बहुत से शब्द भारतीय आर्य भाषा में आ गए। इस भाषा का ध्वनि तंत्र भी काफी प्रभावित हुआ। त वर्ग वाली मूर्धन्य ध्वनियाँ आर्य भाषा में नहीं थी, द्रविड़ प्रभाव से उनका व्यवहार संस्कृत में होने लगा। यह सब हुआ किंतु द्रविड़ प्रभाव से जो बात अछूती रही वह थी सघोष महाप्राण ध्वनियों घ ध भ के व्यवहार की बात। इन ध्वनियों के लिए द्रविड़ भाषाई परिवेश से अधिक विरोधी परिवेश की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे परिवेश में जहां अधिकांश जनता अल्प प्राण स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण की आदि हो वहां से प्राण स्पर्श ध्वनियां सुरक्षित रहे, और यूरोप में जहां ऐसे किसी परिवेश का पता नहीं है वे लुप्त हो जाएं, यह निसंदेह आश्चर्य की बात है। यदि आर्यों ने द्रविड़ों के अलावा कोलों को पराजित किया, उन्हें अपना दास बनाया या नागजनों के साथ वैसा ही व्यवहार किया तो यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। तीन तीन परिवारों के विरोधी भाषाई परिवेश में कम से कम वैदिक काल से लेकर अब तक आर्य भाषा परिवार में सघोष महाप्राण ध्वनियों का व्यवहार निरंतर होता आया है। लैटिन और ग्रीक काफी प्राचीन भाषाएं हैं, इनमें ये ध्वनियां नहीं है। इनके अलावा वर्तमान तुर्की देश में पहले हित्ती भाषा का व्यवहार होता था। इतिहासकार और भाषा विज्ञानी इसे वैदिक भाषा से भी प्राचीन बतलाते हैं, उनमें ये ध्वनियां नहीं है। भारत के उत्तर में एक तुखारी नाम की भाषा का व्यवहार होता था। इसके दस्तावेज बहुत पुराने नहीं है किंतु भाषा विज्ञानियों का कहना है कि यह भाषा वैसे ही प्राचीन है जैसे हित्ती। इसमें भी इन ध्वनियों का अभाव है। प्राचीन ईरानी भाषा भारतीय भाषा के साथ पहले एक ही शाखा के अंतर्गत थी, उसमें भी ये ध्वनियाँ नहीं है। कुछ लोग प्राचीन ईरानी भाषा में आदि आर्य भाषा की ऐसी विशेषता देखते हैं जो वैदिक भाषा में लुप्त हो गई है, और सब प्राचीन विशेषताएं ईरान की पुरानी भाषा में बनी रही, केवल सघोष महाप्राण ध्वनियाँ नष्ट हो गईं। इस पर कौन पृष्ठ संख्या 59 विश्वास करेगा? पृष्ठ संख्या 69 विश्वास करेगा। इस सारी स्थिति को देखने से हम एक ही परिणाम पर पहुँचते हैं, वह यह है कि घ ध भ ये सघोष महाप्राण ध्वनियाँ भारतीय आर्य परिवार की अपनी ध्वनियाँ हैं। हजारों साल तक विरोधी भाषाई परिवेश में उनका नाश न हुआ, इसलिए कि उनके बोलने वालों की एक अटूट परंपरा बनी रही। उधर हजारों साल तक साथ रहने पर भी द्रविड़ नाग कोल परिवारों की भाषाओं में इन ध्वनियों का चलन न हुआ। इसका कारण यह है कि किसी भी भाषा समुदाय के शब्द भंडार में परिवर्तन आसानी से होता है। वाक्य तंत्र और व्याकरण के अन्य स्तरों पर परिवर्तन कुछ और कठिनाई से होता है, किंतु ध्वनि तंत्र में परिवर्तन सबसे ज्यादा कठिन होता है। किसी भी भाषा परिवार के सबसे स्थायी तत्व उसके ध्वनि तंत्र में देखने चाहिए। भारत के चार भाषा परिवारों में वाक्य रचना की बहुत बड़ी समानता है। शब्द भंडार में सर्वनामों तक की समानता है, किंतु ध्वनि तंत्र में मौलिक भेद हैं। दूसरा निष्कर्ष बहुत साफ है, यूरोप की भाषाओं में कभी ये सघोष महाप्राण ध्वनियाँ थी ही नहीं। जब भी नहीं तब जब थी नहीं तब उनके लुप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। तीसरा निष्कर्ष यह निकला कि भारत पर चाहे जितने आक्रमण हुए हों और बाहर से चाहे जितने जन समुदाय भारत में आकर बस गए हों, इनमें ऐसा कोई समुदाय नहीं था जो सघोष महाप्राण स्पर्श ध्वनियों का व्यवहार करने वाला रहा हो। दूसरे शब्दों में आर्यों द्वारा भारत विजय की कहानी विशुद्ध मनगढ़ंत है। अतः जिस आर्य द्रविड़ संघर्ष की कल्पना के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता का खंडन किया जाता है वह स्वयं निराधार है।